जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचार ने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है, इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करें, इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो, इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेंगे। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य हो जाता है और असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे। तो जिनको सुख जानकर पाने की भावना या चाहना करता था वे दुखदायी जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है, वह शुद्ध स्वरूप परम शांत और परमानंद स्वरूप है। उसको पाकर फिर जो दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है, भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है और फिर किसी प्रकार अशांति नहीं रहती, शांतात्मा हो जाता है। हे राघव, बालक किनाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 202। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है उसको ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब जगत आत्म स्वरूप ही भासित होता है। जिस पुरुष को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला उसको अंतवाहक कहते हैं। उसको पत्थर जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी नांग कर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूं, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूं। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला, इससे सब जगत मुझको अपना स्वरूप ही भासित होता रहा। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे, जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता, सब अपने संकल्प में ही उसको भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप देखता है, वैसे ही सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत नदियां और अग्नि देखता है, सो वही रूप है, और आप भी एक आकार धारण करके बन बैठा है, और पहले का स्वरूप उसकी परिच्छिन्नता से भूल जाता है और फिर राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्व रूप वन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा, इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप न भूला, तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा, इससे मुझे खेद कैसे होता। खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिच्छिन्न सा बन जाता है, पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय है उसको दुख कहा, सुख दुख रूप जो पदार्थ है वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको यह दृष्टि हो उसको दुख कहा है। हे रामचंद्र जी, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने को समर्थ होता है, और जहां प्रवेश किया चाहे वह जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे रामचंद्र जी, और कुछ सृष्टि नहीं बनी, आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, मुझको तो सब ऐसा ही भासती है। जब तुम जानोगे तब तुमको भी ऐसे ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार में अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिला से कालख निकलती थी, प्रकाश मैं ही हुआ और अपने चित स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था, उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उल्लूक आदि भी मेरे प्रकाश से प्रकाश पाते हैं, और भावरूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भावरूप पदार्थ तब भासित होते हैं जब उनका रूप होता है। स्वरूपवान पदार्थ मैं ही था, इस कारण सब मुझ ही में सिद्ध होते थे, इस प्रकार मुझको यह भावना हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया, तब पवन रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा, तारों और नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। चंद्रमा और सूर्य को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। समुद्र और नदियों के प्रवाह भी मेरी ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान पंचरूप होकर स्थित हुआ, और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस मैं ही पहुंचाता रहा। हिलना, चलना, बोलना, लेना देना सब मुझ ही से सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति मैं ही हुआ, और सब शब्द मुझ ही से सिद्ध होते थे। क्रिया रूपी बूंद का मैं मेघ हुआ, आकाश रूपी गृह में मेरा निवास था और दशो दिशाएं सब मुझ ही में फूरी थी। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था, जैसे अग्नि में उष्णता रहती है वैसे ही सबके सुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हुआ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ, इसलिए रूप अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ मैं ही हुआ। चंद्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर और यम आदि का जगत होकर मैं ही स्थित हुआ। पंचभूतों के भीतर और बाहर भी मैं था। प्राणपान के क्षोभ से दुख होता है, मैं ही साकार निराकार हूं। सब रक्त पेट श्याम रंग पदार्थ मैं ही हूं। पंचभूत जो चिदणु से फुरे है सो उसी का रूप है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है, इतर कुछ नहीं होती, हाड़ मांस पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समीधा और आकाश रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत आकाश रूप होता है वैसे ही वे भी आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्वात्मा स्थित है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। यह दृष्टि ज्ञानवान की है, परंतु जो असम्यक दर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण जगत अपने में ही देखा। हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म रूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो मैं ब्रह्म से इतर होता तो एक तृण भी न उत्पन्न होता। मैं जो ब्रह्म रूप था इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे रामचंद्र जी, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखा, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। जैसे जहां चंदन का अणु होता है वह सुगंध भी होती है, वैसे ही जहां तत्व के अणु है वह वहां सृष्टि है। हे रामचंद्र जी, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक पुरुष शयन करता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है तो एक ही जीव में बहुत भासते हैं, वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टि होती है। हे रामचंद्र जी, जो सृष्टि है वह आभास रूप है और आभास अधिष्ठान के आश्रित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। इसी से कहा है कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। जो सब ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है, इसे सब ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि फुरी तब मैं उनके भ्रम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आया। जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा मुझको देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है, मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर लिए और शीर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है, दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल है या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है और नेत्र मूंदे हैं, मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन बांधे वह आत्मपद में स्थिर बैठा था। उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशित था, जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होती है वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्मपद में स्थित देखा। जैसे दीपक निर्वाण में स्थिर होता है वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यही बैठा रहने दो और मैं अपने स्थान सप्त ऋषियों में जाऊं। इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा। उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है। फिर उलट कर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहां नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी, सो मेरे संकल्प में स्थित थी। जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी, तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा। हे रामचंद्र जी, उसको गिरता देखकर मैं भी उसके पीछे हुआ कि उसका कौतुक देखूं। निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला, परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था। जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्तद्वीप के पार दश सहस्त्र योजन स्वर्ण की जो धरती है उस पर आ पड़ा और उसी प्रकार पद्मासन बांधे हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे, क्योंकि उसकी शीश और ग्रीवा ऊपर को थे। हे रामचंद्र जी, शरीर प्राण से हिलता चलता है, जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता, इस कारण उसका शरीर सम ही रहा और जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है इसलिए प्रथम किसी प्रकार मैं इसको जगाऊं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके शिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया जिससे पहाड़ फटने लगे, पर उस शब्द को और वर्षा से भी वह न जागा। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे। मैं उसके आगे आकर उपस्थित हुआ, तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रिया अपने स्थान में आई। हे रामचंद्र जी, उसने जब मुझको अपने आगे देखा तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला कि हे साधो, तू कौन है, कहां स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था। सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत स्वभाव में स्थित हूं और सब कुछ कहूंगा, परंतु जल्दी मत कर, मैं स्मरण करके कहता हूं। हे रामचंद्र जी, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो, मेरा तुमको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्तरूपी समुद्र से यह प्रवाह निकलता है, जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं, राग द्वेष ही इसमें तरंग है, भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग है वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह न पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती, वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति न हुई। हे मुनीश्वर, इस जगत को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे, परंतु मुझको शांति न हुई। इनको असत जानकर मैं फिरा और विचार किया कि जो सार हो उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि सार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित ही है, उससे मैं उसी में स्थित हूं। हे मुनीश्वर, जितने विषय है वे विष रूप है, विष के पान से मृत्यु होती है, स्त्री धन आदि सुख मोह और दुख देने वाले हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इनमें पड़कर सावधान रहता है? ये तो स्वरूप को भुलाने वाले हैं। हे मुनीश्वर, देह रूपी एक नदी है जिसमें बुद्धि रूपी एक मछली रहती है। जब वह सिर बाहर निकालती है अर्थात इच्छा करती है, तब भोग रूपी बगला इसको खा जाता है अर्थात आत्म मार्ग से भ्रष्ट करता है। ये जो भोग रूपी चोर है, इनका संग जब जीव करता है तब वे इनको लूट लेते हैं अर्थात आत्मज्ञान से शून्य करते हैं, और जब यह आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मों का अंत नहीं आता, अनेक शरीर पाता है। जैसे चाक पर चढ़ी हुई मृत्तिका अनेक बर्तनों के आकार धारण करती है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित जीव अनेक शरीर धारण करता है। पर अब मैं जागा हूं, मुझको वे अब नहीं लूट सकते। हे मुनीश्वर, भोग रूपी बड़े नाग हैं, और जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, पर विषय रूपी सर्प के फुत्कार से ही जीव मृतक होता है अर्थात इच्छा करने से ही आत्मपद से शून्य हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला और महावत के वश में आया हाथी निरादर को पाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है वह शरीर भी नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा का और अहम प्रतीति न करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करता है वह महामूर्ख है, किसी क्षण काल उसको ग्रस लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुखों का ही कारण है। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।